पृष्ठ संख्या 140, अध्याय 4, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, युद्ध का आरंभ। अगस्त 1939 की 23 तारीख को सोवियत जर्मन अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर हुए। अब पोलैंड पर आक्रमण का रास्ता साफ हो चुका था। हिटलर को विश्वास था कि पहले की तरह पश्चिमी शक्तियां आक्रमण की ओर से आंखें बंद कर लेगी। उसने अपने कमांडरों से कहा था, हमारे शत्रु भुनगे हैं, मैं उन्हें म्यूनिख में देख चुका हूँ। 1 सितंबर 1939 को हिटलर की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन युद्ध की घोषणा के बावजूद ब्रिटेन और फ्रांस में से कोई भी पोलैंड की मदद के लिए नहीं पहुंचा। 3 हफ्ते में पोलैंड परास्त हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने पश्चिम में भी कोई सैनिक कार्रवाई आरंभ नहीं की थी। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था, लेकिन अभी वह पूरब में यूरोप के एक छोटे से हिस्से तक सीमित था। युद्ध की घोषणा के बाद लगभग 7 महीने तक छोटी मोटी नौसैनिक झड़पों को छोड़कर ब्रिटेन और फ्रांस की जर्मनी के साथ कोई वास्तविक लड़ाई नहीं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के इस दौर को इतिहास में वाक युद्ध, फोनी वार कहा गया है। पूर्वी पोलैंड और बाल्टिक राज्यों पर सोवियत कब्जा। पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के कुछ दिन बाद सोवियत संघ ने पोलैंड के उन पूर्वी हिस्सों पर कब्जा कर लिया जो पहले रूसी साम्राज्य के यूक्रेन तथा वाइलोरूसी प्रदेशों में शामिल थे। इन इलाकों को फिर सोवियत संघ के यूक्रेनी तथा वाइलोरूसी गणतंत्रों में मिला लिया गया। सोवियत संघ ने अपनी इस कार्यवाही को इस आधार पर उचित बताया कि ये प्रदेश पोलैंड ने उससे प्रथम विश्व युद्ध के बाद हत्या लिए थे और पोलैंड में जर्मनी के आ जाने से रूस की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि पोलैंड के पूर्वी हिस्सों पर रूसी कब्जा पोलैंड को आपस में बांट लेने की जर्मन सोवियत योजना का अंग था। नवंबर 1939 में सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच लड़ाई छिड़ गई। यह लड़ाई मार्च 1940 में सोवियत फिनिश शांति संधि के साथ समाप्त हुई। इस संधि से सोवियत संघ को एक नौसैनिक अड्डा और फिनलैंड के उत्तर में कुछ प्रदेश मिल गए और दोनों देशों ने तय किया कि वे ऐसे किसी देश के साथ नहीं मिलेंगे जो उनमें से किसी का भी शत्रु हो। इस बीच सोवियत संघ ने लातविया, लिथुआनिया और एस्तोनिया के बाल्टिक राज्यों पर कब्जा कर लिए। ये राज्य रूसी साम्राज्य के अंग रह चुके थे और प्रथम विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए थे। अगस्त 1940 में इन देशों में सोवियत गणतंत्र स्थापित कर दिए गए और वे सोवियत संघ का हिस्सा बना लिया गया। डेनमार्क और नॉर्वे की विजय। अप्रैल 1940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने ऐलान किया कि हिटलर के हाथों से मौका निकल चुका है, क्योंकि जब पश्चिमी यूरोप आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए तैयार नहीं था, उस समय वह उस पर आक्रमण करने में चूक गया। चंद दिनों बाद ही उसका अंदाजा गलत साबित होने वाला था और महीने भर बाद वह प्रधानमंत्री पद से हाथ धोने जा रहा था। स्वीडन जर्मनी को कच्चा लोहा निर्यात करने वाला प्रमुख देश था और स्वीडन से कच्चे लोहे की आपूर्ति जारी रखने के लिए नॉर्वे जर्मनी के लिए महत्वपूर्ण था। इस बीच नॉर्वे में एक फांसीवादी आंदोलन आरंभ हो गया था और उसका नेता विदकुम क्विंसलिंग अपने देश पर जर्मनी के हमले का रास्ता साफ करने के लिए उससे संपर्क बनाए हुए था। 9 अप्रैल 1940 को हिटलर ने डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला कर दिया। डेनमार्क ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया और जून तक नॉर्वे के फांसीवादियों ने सक्रिय सहयोग से जर्मनी ने उसे भी परास्त कर दिया। नॉर्वे के फांसीवादी के नाम से क्विसलिंग शब्द का अर्थ हो गया है ऐसा एक व्यक्ति जो शत्रु सहयोगी हो और विदेशी शक्ति को अपने देश पर अधिकार करने में सहायता करे और विदेशी शासकों की कठपुतली बनकर प्रधानमंत्री इत्यादि बन जाए। नॉर्वे की मदद के लिए भेजी गई ब्रिटिश और फ्रांसीसी फौजें वहां से पहले ही वापस चली गई थी। डेनमार्क और नॉर्वे की विजय से हिटलर को उत्तरी यूरोप में महत्वपूर्ण वायु सैनिक तथा नौसैनिक अड्डे मिल गए। बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस का आत्मसमर्पण। 10 मई 1940 को जर्मनी ने नीदरलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, लुक्जमबर्ग और फ्रांस पर आक्रमण किया। नीदरलैंड्स ने 5 दिनों में और लुक्जमबर्ग ने चंद घंटों में आत्मसमर्पण कर दिया। बेल्जियम के राजा ने आक्रमण के 17 दिन बाद 28 मई को अपनी सेना को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। 26 मई को कोई 3.5 लाख ब्रिटिश, फ्रांसीसी और बेल्जियमी सैनिकों, अर्थात जिन बेल्जियमी की सैनिकों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था, का जो पीछे हटकर डंकर्क चले गए थे, मैदान खाली करने का सिलसिला आरंभ हुआ और 4 जून तक उन्हें ब्रिटेन पहुंचा दिया गया। वे अपने सारे भारी साज सामान अपने पीछे डंकर्क में ही छोड़ गए। इस बीच ब्रिटेन और फ्रांस में राजनीतिक परिवर्तन हो चुके थे। 10 मई को चैम्बरलेन ने त्यागपत्र दे दिया था और उसके स्थान पर विंस्टन चर्चिल को संवैधानिक सरकार का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। लेबर पार्टी के नेता क्लेमेंट एटली को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। मार्च 1940 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री दलादियार को अपदस्थ करके उसके स्थान पर पॉल रेनो को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। उस समय के फ्रांसीसी मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य पराजयवादी यानी ऐसे लोग थे जो हिटलर के सामने आत्मसमर्पण करने के पक्ष में थे। 9 जून को फ्रांसीसी सरकार ने पेरिस का त्याग पत्र कर दिया और 14 जून को पेरिस पर जर्मनी सेना का कब्जा हो गया। जब इस फ्रांसीसी सरकार का प्रधान मार्शल हेनरी फिलिप पेटो था, जिसने जर्मनी से शांति के लिए अपील की, अब तक इटली इन सब से अलग रहा था। अब जबकि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों को अपनी पराजय सामने दिखाई दे रही थी, 10 जून को वह भी जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। 22 जून को पेटो की सरकार ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार अल्सेस लोरेन को जर्मनी ने अपने राज्य में मिला लिया। उत्तरी फ्रांस पर जर्मन सेना ने कब्जा कर लिया और पेटो की सरकार को लगभग आधे फ्रांस पर नियंत्रण रखने दिया गया। अब पेटो की यह कठपुतली सरकार वीसी में जाकर वहीं से आधे फ्रांस का शासन संभालने लगी। उसे फ्रांसीसी उपनिवेशों पर अपना अधिकार कायम रखने के लिए दिया गया और बदले में वह नाजियों की सहयोगी बन गई। अब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था। उस समय चार्ल्स डिगॉल फ्रांसीसी सेना में कर्नल था और फ्रांसीसी सरकार के आत्मसमर्पण के बाद वह बचकर ब्रिटेन भाग निकला था। डिगॉल अब जनरल डिगॉल के नेतृत्व में स्वतंत्र फ्रांस मुक्ति आंदोलन फ्री फ्रांस मूवमेंट आरंभ हुआ और नाजी जर्मनी से लड़ने के लिए ब्रिटेन में एक फ्रांसीसी सेना भी तैयार की गई। फ्रांस के जिस हिस्से पर पेटो सरकार का शासन था और जो नाजियों के साथ सहयोग कर रहा था, वह वीसी फ्रांस के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन की लड़ाई लगभग पूरे पश्चिमी यूरोप को जीत लेने के बाद जर्मनी की योजना ब्रिटेन पर आक्रमण करने की थी। इसे सी लाइन, सागर सिंह का सांकेतिक नाम दिया गया। ब्रिटेन पर आक्रमण करना तभी संभव था जब जर्मनी इंग्लिश चैनल पर नियंत्रण स्थापित कर लेता, जिसे पार करके ही जर्मनी सेना ब्रिटेन में पहुंच सकती थी। ब्रिटिश वायुसेना तथा नौसेना जर्मनी को चैनल पार करने से ना रोक सके, इसके लिए यह आवश्यक था कि उन्हें निष्प्रभावी बना दिया गया। जर्मन बमबाज और युद्ध विमानों ने ब्रिटिश बंदरगाहों, हवाई अड्डों तथा विमान कारखानों पर बमबारी शुरू कर दी। इन दोनों देशों के विमानों के बीच इंग्लिश चैनल तथा ब्रिटेन के शहरों और बंदरगाहों के ऊपर जमकर संकुल युद्ध हुए। जर्मनी वायुसेना को ब्रिटेन की वायुसेना से अधिक नुकसान हुआ। ब्रिटेन के प्रबल प्रतिरोध के कारण जर्मनी ने वहां की जनता के नैतिक बल को तोड़ने की आशा से ब्रिटेन के बड़े नगरों, खासकर लंदन पर रात में हवाई हमले शुरू कर दिए। जवाब में ब्रिटेन ने जर्मनी पर हवाई हमले किए। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच की हवाई लड़ाई को इतिहास में ब्रिटेन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अपने ओजस्वी भाषणों से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन की जनता के नैतिक बल को बुलंद रखा। इनमें से कुछ भाषण वक्तव्य के उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही भाषण में उन्होंने कहा था, इस समय मेरे पास अपने देश भाइयों को देने के लिए रक्त, कठोर श्रम, आंसू और पसीने के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि बहुत से पुराने और प्रसिद्ध राज्य, गेस्टैपो, जर्मन खुफिया पुलिस तथा नाजी शासक के अन्य दानवीर संगठनों की गिरफ्त में जा चुके हैं या जा सकते हैं, लेकिन हम अंत तक लड़ाई जारी रखेंगे। हम फ्रांस में लड़ेंगे, सागरों में लड़ेंगे, महासागरों में लड़ेंगे और अधिकाधिक शक्ति तथा आत्मसमर्पण के साथ आसमान में लड़ेंगे। हम अपने द्वीपों की रक्षा करेंगे, चाहे उसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। हम समुद्र तटों पर लड़ेंगे, हम हवाई अड्डों पर लड़ेंगे, खेतों और सड़कों पर लड़ेंगे और पहाड़ियों पर लड़ेंगे, लेकिन कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ब्रिटेन वासियों ने अपने हवाई अड्डे की हिफाजत करने में कामयाबी हासिल की और उन्हें कई गंभीर क्षति नहीं पहुंचाई गई। उन्होंने अपने विमान उद्योग का उत्पादन भी बढ़ाया, जिससे न केवल ब्रिटेन की लड़ाई में उनके विमानों की क्षति की भरपाई होती रही, बल्कि उनके विमानों की संख्या में वृद्धि भी हुई। ब्रिटिश प्रतिरोध के फलस्वरूप ऑपरेशन सी लायन अनिश्चितकाल के लिए टल गया और नवंबर 1940 से लंदन पर जर्मन हवाई हमले कमोवेश बंद हो चुके थे। युद्ध के अन्य क्षेत्र। इस बीच युद्ध यूरोप के कुछ अन्य हिस्सों और अफ्रीका में भी फैल चुका था। 27 सितंबर 1940 को जर्मनी, इटली और जापान ने एक त्रिपक्षीय संधि की। इस संधि के अनुसार प्रत्येक देश ने बाकी दो देशों को किसी तीसरी शक्ति द्वारा उन पर हमला होने पर सहायता देने का वचन दिया। जर्मनी और इटली ने जापान के बृहत्तर पूर्वी एशिया सह समृद्धि क्षेत्र ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी अस्फियर का निर्माण करने का दावा स्वीकार कर लिया। इस तथाकथित सह समृद्धि क्षेत्र के निर्माण का मतलब यह था कि जापान ने न केवल चीन और मंचूरिया पर बल्कि पूरे पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया पर जर्मन तथा इतालवी वर्चस्व को मान्यता दी। अक्टूबर 1940 में इटली ने यूनान पर आक्रमण किया, लेकिन जब वहां उसे प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा तो उसने जर्मनी से मदद मांगी। नवंबर 1940 और मार्च 1941 के बीच जर्मनी ने हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया और बुल्गारिया को भी त्रिपक्षीय गुट में शामिल कर लिया और अपने सैनिक इन देशों में भेज दिए। इस प्रकार ये देश जर्मनी, इटली और जापान के मित्र देश बन गए। इस समय तक हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया था। उपर्युक्त चारों देशों में सैनिक भेजना सोवियत संघ पर आक्रमण करने की तैयारी का हिस्सा है। अप्रैल में जर्मन सैनिक यूगोस्लाविया और यूनान भेजे गए। यूनान ने अपने ऊपर इटली के हमले को नाकाम कर दिया। अब जर्मन सेना की मदद से यूगोस्लाविया और यूनान दोनों को परास्त कर दिया गया। जून 1941 तक जर्मनी और इटली रूस तथा ब्रिटेन को छोड़कर पूरे यूरोप को जीत चुके थे। इस बीच इटली ब्रिटिश सोमालीलैंड तथा सूडान को जीतकर मिस्र की ओर बढ़ गया था, लेकिन 1940 तक अंग्रेज न केवल अफ्रीका के अपने सभी उपनिवेशों को फिर से जीत लेने में सफल हो गए थे, बल्कि लीबिया को छोड़कर बाकी सभी अफ्रीकी देशों में इतालवी सेना को खदेड़ देने में भी कामयाब हो गए थे। फरवरी 1941 में जर्मन सैनिक लीबिया भेजे गए और जर्मनी तथा इटली ने अंग्रेजों के खिलाफ अफ्रीका में दूसरा अभियान आरंभ कर दिया। यूरोपीय शक्तियों के मध्य अफ्रीका की लड़ाई 2 वर्षों तक चली। सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण। साम्यवाद तथा सोवियत संघ के प्रति हिटलर की नफरत, पश्चिमी देशों द्वारा हिटलर के तुष्टीकरण, फांसीवाद, अतिक्रमण को रोकने के लिए एक गुट बनाने की सोवियत संघ की कोशिशों और सोवियत जर्मन अनाक्रमण समझौते का जिक्र हम कर चुके हैं। हिटलर हमेशा से मानता रहा था कि उसे असली लड़ाई सोवियत संघ के खिलाफ लड़नी होगी। उसका विश्वास था कि सोवियत संघ के विशाल संसाधनों के जीत लेने से जर्मनी अभेद हो जाएगा और उसे सभी महादेशों के साथ लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। सोवियत संघ को जीतने का लक्ष्य जर्मनी के दूसरे सैनिक अभियानों के लक्ष्य से बहुत भिन्न थी। हिटलर का इरादा इस लड़ाई को विनाश की संपूर्ण लड़ाई का रूप देने का था। इसका लक्ष्य केवल साम्यवाद का ही विनाश नहीं था, बल्कि हिटलर का इरादा यूराल से पश्चिम के प्रदेशों में विशुद्ध आर्य रक्त के यानी जर्मन नस्ल के 10 करोड़ लोगों को बसाने का था। और चूंकि जर्मनी के संख्या इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए यह सौभाग्य दूसरों को भी दिया जाना था। इन दूसरों में उत्तरी यूरोप के लोग, डच तथा अंग्रेज भी शामिल थे, जिन्हें नस्ली तौर पर जर्मनों का नज़दीकी माना जाता था। इस क्षेत्र में वह जिस नई सभ्यता की स्थापना की योजना बना रहा था, उसका वर्णन उसने लड़ाई के दौरान इन शब्दों में किया था। इस क्षेत्र पर एशियाई मैदान वाला रूप खत्म होना चाहिए, इसका यूरोपीयकरण करना चाहिए। राइक के किसान, जर्मन किसान को अतीव मनोरम बस्तियों में ही रहना चाहिए। जर्मन अभिकरणों तथा प्राधिकरणों की इमारतें भव्य होनी चाहिए। शासकों को शोभा देने योग्य हर शहर के चारों ओर 20 से 40 किलोमीटर तक सुंदर गांवों की एक श्रृंखला होगी। माला में बीचों बीच में पिरोए मोती के दोनों ही तरफ जर्मन नगर स्थित होंगे और नगरों के चारों ओर बस्तियां होगी। कारण, हमने अपने लिए लेम्बे अस्त्राम शाब्दिक अर्थ ठीक जिंदा रहने के लिए आवश्यक जमीन, नाजियों द्वारा अन्य देशों की भूमि के लिए प्रयुक्त शब्द जिसे वे जर्मनी के राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए आवश्यक मानते थे, के द्वार नहीं खोलेंगे। हम स्वयं उन पुरानी बदकिस्मत गंदी रूसी बस्तियों में नहीं रहेंगे। बस्तियां निश्चित रूप से बहुत ऊंचे स्तर की होगी। यहूदियों का सर्वनाश और अस्लावों को गुलाम बनाना इस योजना के अभिन्न अंग थे। सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना 1940 के आरंभ से ही बनाई जाने लगी थी। उसे ऑपरेशन बारबरोसा की सांकेतिक संज्ञा दी गई। लाल सेना के नाम से विख्यात सोवियत सेना के बारे में हिटलर की राय बहुत खराब थी। उसे वह एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। योजना के अनुसार सोवियत संघ को 9 या ज्यादा से ज्यादा 17 हफ्तों के अंदर जीत लेना था, लेकिन जैसा कि घटनाचक्र से सिद्ध हुआ, यह आक्रमण नाजी शासन और स्वयं हिटलर के विनाश का कारण बना। जर्मन आक्रमण के बाद सोवियत सरकार ने सोवियत जर्मन अनाक्रमण समझौते को इस आधार पर उचित ठहराया कि उससे सोवियत संघ की शांति के 1.5 वर्ष और नाजी हमले का मुकाबला करने की तैयारी करने का अवसर मिल गया। इस प्रकार वह समय प्राप्त करने की एक रणनीति थी। मगर जब आक्रमण हुआ तो सोवियत संघ बिल्कुल भौचक रह गया और उसे करारी हारों और बर्बादी का मुंह देखना पड़ा। कुछ सोवियत लेखक कहते हैं कि इसका कारण यह था कि सोवियत संघ को आक्रमण का प्रतिरोध करने की पूरी तैयारी करने का समय नहीं मिल पाया। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों की राय है कि स्टालिन अनाक्रमण समझौते पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके चल रहा था और मानने लगा था कि जर्मनी अभी लंबे समय तक सिर्फ पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों के साथ ही उलझा रहेगा, इसलिए सोवियत संघ को तत्काल कोई खतरा नहीं है। इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब से युद्ध आरंभ हुआ था, स्टालिन ने सोवियत संघ में नाजी विरोधी तथा जर्मन विरोधी विचारों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब तक जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण नहीं किया था, तब तक वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध को फांसीवादी शक्तियों द्वारा आरंभ की गई लड़ाई के तौर पर नहीं, बल्कि साम्राज्यवादियों के आपसी युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा। अनाक्रमण संधि तथा सोवियत संघ द्वारा पोलैंड पर किए गए हमले और बाल्टिक राज्यों पर कब्जा करने से सोवियत संघ तथा साम्यवादी दलों की लोकप्रियता में पूरी दुनिया में कमी आई। युद्ध की किसी औपचारिक घोषणा के बिना 22 जून 1941 को जर्मन आक्रमण आरंभ हो गया। वायुसेना समर्थित जर्मन टैंक लेनिनग्राड, मॉस्को और कीव की ओर जाने वाले 3,000 किलोमीटर से अधिक लंबे मोर्चे से होकर तेजी से आगे बढ़े। सोवियत सेना लगातार पीछे हटती रही और जर्मन सेना ने कीव, आस्मोलेंक्स तथा ओडेसा पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने सर्दी शुरू होने से पहले ही सोवियत संघ के खिलाफ अपने युद्ध को अंतिम परिणति तक पहुंचा देने की आशा की थी। अक्टूबर के आरंभ में मॉस्को के चारों ओर घेरा डाल दिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शीघ्र ही भयावह रूसी ठंड आरंभ हो गई। नवंबर के मध्य तक मॉस्को पर आक्रमण को रोकना पड़ा। नवंबर के अंत तक तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे आ गया था, जिससे जर्मनी के काफी सारे भारी साज सामान बेकार हो गए। जर्मन सिपाहियों को इतने कपड़े नहीं दिए गए थे कि वे रूस की सर्दी को झेल पाते। दिसंबर में सोवियत प्रत्याक्रमण आरंभ हुआ और जनवरी तक जर्मन सेना को मॉस्को से खदेड़ दिया गया। ऑपरेशन बारबरोसा विफल हो चुका था, लेकिन जर्मनी की पूर्ण पराजय में अभी देर थी। इस बीच दुनिया में कई और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी थी। संयुक्त राज्य का विश्व युद्ध में प्रवेश। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, उस समय संयुक्त राज्य ने अपने को तटस्थ घोषित कर दिया था। फांसीवादी अतिक्रमण के आरंभ से ही संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस की जैसी नीति पर चलता रहा था। सुडेटनलैंड को लेकर चलने वाली वार्ता में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने चैम्बरलेन की तुष्टीकरण की नीति का समर्थन किया था। उसने चीन पर जापानी हमले का विरोध किया था, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं। इस युद्ध में ज्यादातर अमेरिकी ब्रिटेन से सहानुभूति रखते थे, लेकिन वे लड़ाई में संयुक्त राज्य की सीधी शिरकत के खिलाफ थे। ब्रिटेन को संयुक्त राज्य के शस्त्र अस्त्र की नकद खरीदारी करने की दी गई। धीरे धीरे ब्रिटेन के प्रति संयुक्त राज्य का समर्थन बढ़ता गया। 1941 के आरंभ होते होते ब्रिटेन इस स्थिति में नहीं रह गया था कि वह शस्त्र अस्त्रों तथा अन्य साज सामानों की कीमत चुका सके। इन सब के लिए वह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य पर निर्भर था। मार्च 1941 में संयुक्त राज्य की कांग्रेस संसद ने एक कानून पास किया, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह ऐसे किसी भी देश को उधार या पट्टे पर शस्त्र नहीं दे सकता है जिसकी रक्षा को वह संयुक्त राज्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण ना समझे। इसे उधार पट्टा व्यवस्था, लैंड लीज सिस्टम की संज्ञा दी गई। अब ब्रिटेन को संयुक्त राज्य अमेरिका से बड़े पैमाने पर शस्त्र अस्त्र आदि प्राप्त होने लगे। बाद में संयुक्त राज्य ने ब्रिटेन जाने वाले अपने लदे जहाजों की जर्मन हमलों से हिफाजत करने का जिम्मा भी ले लिया। साथ ही संयुक्त राज्य के उद्योगों ने विशाल परिमाण में शस्त्र अस्त्रों, विमान तथा जहाजों का निर्माण आरंभ कर दिया। नवंबर 1941 में अमेरिकी उधार पट्टा व्यवस्था सोवियत संघ पर भी लागू कर दी गई। अटलांटिक चार्टर। इन्हीं दिनों एक और भी महत्वपूर्ण घटना हुई। अगस्त 1941 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, जो 1940 में तीसरी बार इस पद पर चुना गया था, ने अपनी अगस्त 1941 की मुलाकात के बाद एक घोषणा जारी की। यह घोषणा अटलांटिक चार्टर, अटलांटिक घोषणा पत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। यद्यपि इसका मतलब यह नहीं था कि संयुक्त राज्य युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध हो गया है। इस घोषणा पत्र में कुछ सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, जिनके आधार पर विश्व के लिए बेहतर भविष्य की रचना की जा सकती थी। दोनों देशों ने इन सिद्धांतों से अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, और ये सिद्धांत एक प्रकार से युद्ध लक्ष्य की घोषणा के रूप में सामने आए। दोनों देशों ने कहा कि हम कोई प्रादेशिक या अन्य प्रकार का लाभ नहीं चाहते, और ना देशों की स्थिति में ऐसे परिवर्तन चाहते हैं जो संबंधित जन समाज की स्वतंत्र इच्छा के अनुरूप ना हो। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि दोनों देश तभी जन समाजों के अपनी मर्जी की सरकार चुनने के अधिकार का आदर करते हैं। वे चाहते हैं कि जिन लोगों की संप्रभुता और स्वशासन के अधिकार जबरदस्ती छीन लिए गए हैं, उन्हें वे वापस लौटा दिए जाए। घोषणा पत्र में नाजी जुल्म को सदा के लिए समाप्त कर देने की बात भी कही गई थी। सोवियत संघ भी इस घोषणा में शामिल हो गया। दिलचस्प बात यह है कि जब भारतीय नेताओं ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की मांग की और उसके समर्थन में अटलांटिक चार्टर के सिद्धांतों का हवाला दिया, तो चर्चिल ने यह कहते हुए फटकार बता दी कि ये सिद्धांत केवल उन देशों पर लागू होते हैं जो जर्मनी के कब्जे में हैं। पर्ल हार्बर पर आक्रमण। संयुक्त राज्य ने अब तक युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश नहीं किया था। जुलाई 1941 में जापानियों ने हिंद चीन, इंडो चाइना में वियतनाम पर कब्जा कर लिया था। अक्टूबर में जापान में और भी आक्रमण रुख अपनाने वाली सरकार पदारूढ़ हुई। उसका प्रधान जनरल हिदेकी तोजो था। जापानियों ने एक और भी आक्रामक कार्रवाई करने की तैयारी की। इस बार उनका लक्ष्य प्रशांत महासागर था। 7 दिसंबर 1941 को जापानी बमबाज विमानों ने हवाई द्वीप में पर्ल हार्बर में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। संयुक्त राज्य मान रहा था कि अगर जापान ने आक्रमण किया भी तो वह उस क्षेत्र के ब्रिटिश और डच उपनिवेशों पर ही हमला करेगा, इसलिए इस जापानी कार्रवाई के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं था। बमबारी में संयुक्त राज्य के 188 विमान और बहुत से युद्धपोत, क्रूजर तथा अन्य नौसैनिक जहाज ध्वस्त हो गए एवं 2,000 से अधिक सैनिक मारे गए। जापानियों को मामूली क्षति हुई। 8 दिसंबर को संयुक्त राज्य ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 11 दिसंबर को जर्मनी और इटली के संयुक्त राज्य के खिलाफ तथा संयुक्त राज्य ने इन दोनों देशों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया। विश्व युद्ध। सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण, पर्ल हार्बर पर जापानी हमला और संयुक्त राज्य पर लड़ाई में उतर आना। 1941 की इन घटनाओं ने इस युद्ध को वास्तव में विश्व युद्ध में परिणत कर दिया। 1942 के अंत तक जापान ने प्रशांत क्षेत्र में कई द्वीपों, फिलीपींस, इंडोनेशिया, बर्मा, मलाया, सिंगापुर और थाईलैंड पर कब्जा कर लिया। इस समय फांसीवादी विरोधी गठबंधन कायम हुआ जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य शामिल हुए। विंस्टन चर्चिल ने इसे महान गठबंधन, ग्रैंड अलायंस की संज्ञा दी। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य साथ होकर संयुक्त कमान के अधीन लड़े। यद्यपि सोवियत संघ के साथ मिलकर कोई संयुक्त कार्रवाई नहीं की जा गई, तथापि तीनों ने आपस में सक्रिय सहयोग किया और कभी-कभी तीनों ने सामान्य रणनीति भी बनाई। इसके अलावा अब संयुक्त राज्य के उद्योग के विशाल संसाधनों को युद्ध संचालन के लिए विनियोजित किया गया। अपरिमित परिणाम में युद्ध सामग्री का उत्पादन किया गया जिसमें 3 लाख विमान और 85,000 टैंक भी शामिल थे। संयुक्त राज्य को विजय का शस्त्रागार कहा गया। सोवियत संघ ने जनरल डिगॉल को मान्यता दी जिसने बाद में समस्त स्वतंत्र फ्रांसीसियों की एक कामचलाऊ सरकार गठित कर ली थी। स्टालिन ग्रांड की लड़ाई। वर्ष 1942 के पूरे दौर में यूरोप में यह युद्ध लगभग पूरे रूप में से सोवियत सेना तथा जर्मनी और उसके मित्र देश रोमानिया और बुल्गारिया की सेना के बीच लड़ा गया। जब मॉस्को पर जर्मन आक्रमण को विफल कर दिया गया तो जर्मनी की सेना कॉकेसस की ओर से बहुत दूर तक बढ़ाई गई। मार्च 1942 में हिटलर ने दावा किया था कि लाल सेना को इसी ग्रीष्म में कुचल दिया जाएगा। जुलाई में जर्मन सेना ने स्टालिन ग्रांड, अब बोल्गो ग्रांड पर आक्रमण किया और मध्य सितंबर तक वह स्टालिन ग्रांड की सीमाओं पर पहुंच गई। इसके बाद वह संघर्ष आरंभ हुआ जिसे द्वितीय विश्व युद्ध सबसे बड़ा एकल शक्ति परीक्षण कहा गया है। नवंबर के मध्य तक जर्मनी सेना स्टालिन ग्रांड के अंदर और आसपास पहुंच चुकी थी। एक एक इंच जमीन के लिए स्टालिन ग्रांड में तुमूल संघर्ष चल रहा था। नवंबर के आखिरी दिनों में स्टालिन ग्रांड में और उसके आसपास मौजूद जर्मन सेना को सोवियत सेना ने घेर लिया और अब उसे भागते राह नहीं मिल रही थी। कोई साज सामान रसद पानी तक उस तक नहीं पहुंच सकता था। घेरे में पड़े जर्मन सेना के कमांडर जनरल पालस ने 24 जनवरी 1943 को खबर भेजी कि जर्मन सेना के जो सैनिक बचे हुए हैं उनमें से 20,000 घायल हैं, जिनकी कोई सुश्रुषा परिचर्चा नहीं हो रही है, और 20,000 शीत छत फ्रॉस्ट बाइट से पीड़ित हैं। उनके पास लड़ने को हथियार नहीं है और वे भूखे मर रहे हैं। 31 जनवरी को पालस ने आत्मसमर्पण कर दिया। स्टालिनग्राड की लड़ाई 5 महीने चली, जिस दौरान वह शहर मलबे का ढेर बन गया था। इस लड़ाई में जर्मन पराजय को इतिहास में किसी भी जर्मन सेना की सबसे गहरी शिकस्त कहा गया है। जर्मनी और उसके मित्र देशों को इस लड़ाई में 3 लाख सैनिकों से हाथ धोना पड़ा। उसमें से कोई 90,000 बच रहे जिन्हें बंदी बना लिया गया। जुलाई 1941 में सोवियत सरकार ने ब्रिटेन से जर्मन अधिकृत फ्रांस पर आक्रमण करके एक दूसरा मोर्चा खोलने का आग्रह किया, ताकि उसके खिलाफ संकेंद्रित जर्मन सेना को इस नए मोर्चे पर ध्यान देना पड़े और रूस पर दबाव कम हो। लेकिन ब्रिटेन इस पर सहमत नहीं हुआ। मई और जून 1942 में सोवियत संघ ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य से पुनः दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया। संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति इसके लिए तैयार भी था, लेकिन अंत में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य ने नया मोर्चा खोलने की बजाय अपनी सेना को उत्तरी अफ्रीका भेजने का फैसला किया। यूरोप में 1942 में दूसरा मोर्चा ना खोलने के पक्ष में तर्क यह दिया गया कि अभी ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप में जर्मन सेना पर आगे बढ़कर हमला करने लायक ताकत नहीं जुटा पाए हैं। लेकिन सोवियत संघ ने इसका अर्थ यह लगाया कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य चाहते हैं कि सोवियत संघ का बूंद बूंद रक्त निचोड़ लिया जाए, ताकि वे अपनी सेनाएं सुरक्षित रख सके और युद्ध के अंतिम चरणों में शक्ति एवं सर्वशक्तिमान होकर उभरे। लेकिन स्टालिनग्राड की जर्मन पराजय के बाद तीनों शक्तियों के बीच अधिक सहयोग होने लगा। 1943 के मध्य में जर्मनी और उसके मित्र देशों की सेनाओं ने सोवियत सेना के खिलाफ एक और भी जबरदस्त मुहिम छोड़ी, लेकिन उस साल अगस्त महीने में उन्हें करारी हार का मुंह देखना पड़ा और उनके कोई 5 लाख सैनिक मारे गए। उसे कुर्स्क की लड़ाई कहते हैं। उसके बाद उन्हें लगातार पीछे धकेला जाता रहा और जनवरी 1944 तक वे पूर्वी मोर्चे के सभी क्षेत्रों से पीछे हटने लगे। उत्तर अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र की लड़ाई 1942 में फांसीवादी ताकतें अपनी शक्ति के शिखर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन 1943 में उन्हें लगभग हर मैदान में हार का मुंह देखना पड़ा। उत्तर अफ्रीका में इटली की घोर पराजय के उपरांत जनरल रोमेल के नेतृत्व में जर्मन सेना उसकी मदद के लिए भेजी गई थी। रोमेल की सेना ने इस मुहिम में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की थी और अगस्त 1942 में उसने मिस्र स्थित ब्रिटिश फौज पर जबरदस्त हल्ला बोल दिया था। अल अलामीन में जनरल मॉन्टगोमरी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के साथ जर्मन सेना की भिड़ंत हुई और नवंबर में जर्मन सेना को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। अल अलामीन की लड़ाई के शीघ्र बाद ब्रिटिश और अमेरिकी फौजें मोरक्को और अल्जीरिया के अटलांटिक तट पर उतरी। ये दोनों देश फ्रांसीसी उपनिवेश थे और वीसी फ्रांस के नियंत्रण में थे, जो जर्मनी के संधि के सूत्र में बंधा हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद इन देशों की फ्रांसीसी सेनाएं मित्र राष्ट्रों से जा मिली। जर्मनी ने वीसी फ्रांस पर कब्जा कर लिया और ट्यूनीशिया, यह भी एक फ्रांसीसी उपनिवेश ही था, को कुमुक भेजी। मार्च 1943 में ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाओं ने ट्यूनीशिया पर आक्रमण किया और जर्मन तथा इतालवी सेनाओं को वहां आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके साथ ही इटली और जर्मनी उत्तरी अफ्रीका से उखड़ गए। उसके पूर्व 1941 में इराक में एक जर्मनी समर्थक विद्रोह भड़क उठा था, जिसे कुचल दिया गया। ब्रिटेन तथा स्वतंत्र फ्रांस की फौजों ने सीरिया तथा लेबनान पर, जो वीसी फ्रांस के अधिकार में थे, कब्जा कर लिया। प्रशांत क्षेत्र में 1942 में संयुक्त राज्य तथा जापान के बीच कई नौसैनिक लड़ाइयां हुई और यद्यपि जापान की बढ़त को रोक दिया गया था तथापि मित्र राष्ट्रों को कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली थी, मगर 1943 में मित्र राष्ट्रों ने प्रशांत क्षेत्र के अपने कई द्वीप जापानियों से छीन लिए। चीन में जापानी आक्रमण जारी रहा और मित्र राष्ट्र वहां अपनी सेना नहीं उतार पाए। चियांग काईशेक को युद्ध सामग्री भेजते रहने में तो वे कामयाब हो गए थे, लेकिन चियांग की सेना जापानियों पर कोई हमला नहीं कर पाई। यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय 1943 में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य ने पश्चिमी यूरोप में अपनी आक्रामक कार्रवाई 1944 तक के लिए स्थगित रखने का फैसला किया था। कुर्स्क की लड़ाई में सोवियत संघ की विजय के बाद उन्होंने सिसिली पर आक्रमण किया। इस समय तक इटली में व्यापक असंतोष फैल चुका था, बार बार हड़तालें हो रही थी, असंतोष सेना में भी फैल गया था। इतालवी सेना को हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी थी और उसने भारी संख्या में मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था। 25 जुलाई 1943 के दिन मुसोलिनी को बर्खास्त कर दिया गया और एक नई सरकार सत्तारूढ़ हुई। इस इटली युद्ध से अलग होना चाहता था। 3 सितंबर को मित्र राष्ट्रों की सेनाएं दक्षिणी इटली पर चढ़ गई और इटली ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 10 सितंबर को जर्मन सेना ने रोम सहित उत्तरी इटली पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मुसोलिनी को नज़रबंदी से रिहा करवाया, जिसने जर्मन संरक्षण में उत्तरी इटली में अपनी सरकार स्थापित की। दक्षिणी इटली में एक नई सरकार बनाई गई, जिसने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यद्यपि कई महीने तक मित्र राष्ट्रों की सेनाएं उत्तर की ओर नहीं बढ़ी, लेकिन उत्तरी इटली के अंदर ही फासीवादियों के खिलाफ प्रतिरोध जोर पकड़ता गया और वे लोग जर्मनी तथा मुसोलिनी के विरुद्ध जमकर लड़े। 1944 में फासीवादी सेनाएं सोवियत प्रदेशों से बाहर निकाल दिए गए और सोवियत संघ ने फिनलैंड को, जो जर्मनी का मित्र देश बन गया था, हरा दिया। पूर्वी यूरोप के देशों जैसे पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया के अधिकार हिस्सों को मुक्त कर दिया गया। इनमें से कुछ देशों में फासीवादी सरकारें बन गई थी जो युद्ध में जर्मनी की ओर से उतरी थी। पोलैंड जैसे कुछ देश सीधे जर्मन कब्जे में थे। फासीवादी सेनाओं को यूनान, यूगोस्लाविया तथा अल्बानिया में भी खदेड़ दिया गया। जून 1944 में मित्र राष्ट्रों ने पश्चिमी यूरोप में दूसरा मोर्चा खोला। 6 जून को, जिसे डीके कार्रवाई शुरू करने के लिए तय किया गया दिन कहा जाता है, फ्रांस के उत्तरी हिस्से में नॉरमैंडी के समुद्र तट पर मित्र राष्ट्रों की सेना की पहली खेप उतरी। जुलाई के अंत में फ्रांस में उतारे गए मित्र राष्ट्रों के सैनिकों की संख्या 16 लाख तक पहुंच गई। उनकी कमान जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर के हाथों में थी, जो बाद में संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति बना। सितंबर 1944 तक मित्र राष्ट्रों की सेनाएं फ्रांस, लुक्जमबर्ग और बेल्जियम को मुक्त करा चुकी थी। जर्मनी ने आखिरी बड़ा प्रत्याक्रमण बेल्जियम के आर्डेनिस क्षेत्र में दिसंबर 1944 में किया। यहाँ की लड़ाई को वल्ज की लड़ाई कहते हैं। इस बीच मार्शल जुकोव के नेतृत्व में रूसी सेना ने पूरे पूर्वी मोर्चे पर भारी हल्ला बोल दिया, जिससे हिटलर को अपने अधिकांश सैनिकों को आर्डेनिस से हटाकर इस मोर्चे पर लगाना पड़ा। फलतः जनवरी के मध्य में यह लड़ाई समाप्त हो गई। जर्मनी का आत्मसमर्पण। जब जर्मनी ने उत्तरी इटली पर कब्जा करके मुसोलिनी को रिहा करवाया और मुसोलिनी ने जर्मनी अधिकृत इटली में अपनी सरकार बनाई, उसके बाद इटली में कई महीनों तक लड़ाई चलती रही, लेकिन जून 1944 तक मित्र राष्ट्रों की सेनाएं रोम सहित कई इतालवी नगरों को मुक्त करा चुकी थी। इस बीच फासीवादी विरोधी इतालवी सेना ने अपनी मुहिम तेज कर दी थी। 23 अप्रैल 1945 को इटली के उन इलाकों में एक विद्रोह हुआ जो अभी फासीवादियों के नियंत्रण में थे। 28 अप्रैल 1942 को मुसोलिनी को, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था, मृत्यु दंड दे दिया गया और इटली में मौजूद जर्मनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही इटली में फांसीवाद समाप्त हो गया। 1945 के जनवरी महीने के आरंभ से ही लगने लगा था कि जर्मनी का पतन निकट है। जनवरी 1945 में आरंभ होने वाले सोवियत हमलों ने पूर्व में जर्मनी की प्रतिरोध शक्ति के तार तार कर दिए। 17 जनवरी को वारसा को मुक्त करा लिया गया, 13 जनवरी को बुडापेस्ट को और 17 अप्रैल को वियना को। अब सोवियत सेना ने जर्मनी में प्रवेश किया और 25 अप्रैल तक बर्लिन पर घेरा डाल चुका था। इस बीच मित्र सेनाओं ने पश्चिम मोर्चे में हमले शुरू कर दिए थे और अप्रैल के मध्य तक वे पश्चिमी जर्मनी के काफ़ी बड़े हिस्से पर काबिज हो चुकी थी। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। उसी दिन सोवियत सेना ने राइक्सटाग भवन पर लाल झंडा फहरा दिया। बर्लिन में अगले 2 दिनों तक कुछ छिटपुट झड़पें होती रही। 7 मई 1945 को जर्मनी ने संयुक्त राज्य ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के सामने जनरल आइजनहावर के राइम्स स्थित मुख्यालय में बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 8 मई 1945 को जर्मनी ने बर्लिन स्थित सोवियत मुख्यालय में दूसरा आत्मसमर्पण किया। 11 मई को चेकोस्लोवाकिया को आज़ाद करा लिया गया और इसी के साथ यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। जापान का आत्मसमर्पण। लेकिन एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद भी युद्ध चलता रहा। मित्र राष्ट्रों ने 1944 में इस क्षेत्र में जीते तो हासिल की थी, लेकिन चीन के मंचूरिया, कोरिया तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में जापान के पैर अब भी मजबूती से जमे हुए थे। वहां उसकी विशाल सेना मोर्चे पर डटी हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक विमान ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। इन बमों से दोनों नगरों में 3,20,000 से अधिक लोग मारे गए। जापान ने 15 अगस्त को हथियार डाल दिया। 8 अगस्त को सोवियत संघ ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। अगस्त के अंत तक जापानी सेना मंचूरिया में सोवियत संघ की सेना के समक्ष, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन सेना के आगे और चीन में चियांग काई शेक तथा चीनी साम्यवादियों की सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी थी। 2 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया।